हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा ध्रुव से शादी करने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थी। इस स्थिति में सिर्फ मौलिक ही तारा की मदद कर सकता था, और तारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मौलिक की मदद ली भी थी। शादी के कुछ घंटों पहले ध्रुव और तारा के बीच एक बार फिर से बहसबाजी हो गई थी, जहां ध्रुव अपने गुस्से में तारा को जानबूझकर सफ़ेद रंग का शादी का जोड़ा देकर गया था। तारा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर उसने सोचकर खुद को समझा लिया कि उसे इस शादी से भागना ही है। प्लान के मुताबिक तारा शादी के वेन्यू से निकल चुकी थी और इस वक्त गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बेफिक्र होकर लेटी थी। तारा ने मन ही मन कहा, अब मैं ज़िंदगी में कभी भी इंडिया की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने बिना किसी तैयारी के कबीर की बातों में आकर इस मिशन को करने के लिए हाँ कही थी। कौन जानता था कि ये मेरी लाइफ बदल देगा। मौलिक मल्होत्रा जैसा सीधा साधा दिखने वाला इंसान एक माफिया किंग है। उसने हमेशा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं, और उसकी वजह से अब ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। गलती से भी ये बात माफिया की दुनिया में फैल गई तो वो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसे में वायु की फैमिली मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। तारा ने मन ही मन पूरी तरह ठान लिया था कि वो यहाँ से निकलकर सीधा वायु से ही शादी करेगी। तारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो वहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे इंसान की नज़रें शीशे के जरिए उस पर टिकी हुई थीं। गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे जा रही थी। तारा को यही लग रहा था कि ये उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए किया जा रहा था, लेकिन जब लगभग 15 मिनट बाद अचानक से गाड़ी इन झटके में रुकी तो तारा ने जल्दी से आँखें खोली। तुमने इतनी जल्दी गाड़ी रोक क्यों दी? क्या हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं? तारा ने हैरानी से पूछा, और फिर बाहर की तरफ देखा तो वो राणा मेंशन के पिछले दरवाजे के आगे खड़ी थी। उस दरवाजे पर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा था। तारा का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक थी। तारा बेवकूफ़ नहीं थी जो उसे ये समझ नहीं आए कि वहाँ क्या चल रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? मुझे वापस यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम उनके आदमी हो ना? देखो, वो तुम्हें काम करने के लिए कितने भी पैसे देते हैं, तुम मुझे बताओ, मैं उसकी 10 गुना ज़्यादा पैसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, मुझे यहाँ से ले चलो। तारा की बातें सुनकर गाड़ी चला रहे शख्स ने आइज रोल की। अचानक वो तारा की तरफ पलटा तो तारा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने ड्राइविंग सीट पर योग था, जिसके फेस पर ईविल स्माइल थी। तुम्हें कितना भी समझा दो, लेकिन तुम बहुत ज़िद्दी हो। पिछली बार जब ध्रुव की शादी हो रही थी तब मैंने अच्छे से कहा था कि धोखा मत देना, फिर भी तुम लोगों की बातों में आ गई, और इस बार भी मेरे कहने के बावजूद तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ से भाग जाओगी? क्या तुम्हारे दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि तुम किसके घर में और किसकी नज़रों के सामने रह रही हो? युग ने तंज भरे लहजे में कहा। युग को अपने सामने देखकर तारा अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके मुँह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। यू नो वॉट, मेरी कृषा चाइल्डिश है, लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं। शादी तो उसकी भी ज़बरदस्ती हो रही थी, पर वो जानती थी कि मुझे धोखा देना उसके बस की बात नहीं है। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ से निकल जाओगी? युग आगे बोला। तारानी आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसने सुबकते हुए युग के सामने हाथ जोड़कर कहा, आई बेग यू मिस्टर राणा, प्लीज़ जाने दीजिए, आपका बेटा मुझसे प्यार नहीं करता है। आपको जो चाहिए वो बिना शादी के भी तो हासिल कर सकते हो ना आप? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसका मकसद पूरा होते ही वो तुम्हें मार देगा, युग ने जवाब दिया। वो वैसे भी मेरी लाइफ हेल बना देगा, आप जानते हो ना वो मुझसे कितनी नफरत करता है, आपने खुद देखा है। कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को शादी के दिन सफ़ेद कपड़े लाकर देता है? फिर क्यों आप ज़िद पर अड़े हुए हो? आपके बेटे की सिर्फ शक्ल आपसे मिलती है, बाकी उसकी शख्सियत पूरी तरह अलग है। वो आपकी तरह एक परफेक्ट हस्बैंड कभी नहीं बन पाएगा, तारा ने रोते हुए कहा, इस उम्मीद के साथ कि उसका पक्ष सुनने के बाद शायद युग को उस पर तरस आ जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो, युग ने तारा की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया था। अगले ही पल युग गाड़ी से बाहर निकला और उसने तारा के लिए दरवाज़ा खोला। वो उसकी कलाई को कसकर पकड़कर अंदर लेकर जा रहा था। वहीं तारा उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही तारा ने पिछले दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसके सामने ध्रुव और मौलिक खड़े हुए थे। मौलिक के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो ये सब पहले से जानता था। मौलिक को देखते ही तारा के चेहरे पर कड़वाहट भर आई। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तो एक बार फिर से आपने मुझे धोखा दे दिया। सही कहा मिस्टर राणा ने, मैं बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे लोगों पर यकीन कर लेती हूँ जो मुझे बार बार धोखा देते हैं। फिर उसकी नज़र ध्रुव की तरफ गई, जो बेइंतहा सर्द निगाहों से तारा की तरफ देख रहा था। तारा के इस तरह भाग जाने पर वो कितना गुस्सा था ये उसकी आंखें साफ बयां कर रही थीं। तारा की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो ध्रुव से नज़र मिला सके। अपना फ्यूचर सोचकर ही तारा को डर लगता था। उसने युग की तरफ देखकर कहा,
आपने कहा था ना आप मेरा साथ देंगे। मिस्टर राणा, प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। आपके फैसले के खिलाफ आपका बेटा भी नहीं जाएगा। तारा की आखिरी उम्मीद बस युग से थी, जो इस शादी को रोक सकता था। युग ने गहरी सांस छोड़कर देखा। तारा जिस तरह से पागलों की तरह रोई जा रही थी और ध्रुव के पास तक जाने से डर रही थी, ऐसे में वही उसको समझा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे तारा का प्लान फ्लॉप हो जाने से उसे कोई बड़ा सदमा लगा है। युग ने तारा के हाथ को सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई प्रॉमिस कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मेरे होते हुए मैं तुम्हें एक छोटी सी खरोच भी नहीं लगने दूंगा। कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, इवन ध्रुव भी नहीं। युग के तारा को प्रॉमिस करने पर जहां मौलिक के चेहरे पर राहत के भाव थे, वहीं ध्रुव ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। युग के प्रॉमिस का मतलब वो अच्छे से जानता था। वो तारा को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला था। ध्रुव को चिढ़ हो रही थी कि तारा के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी युग उसे सबसे क्यों बचाना चाहता था। ट्रस्ट मी तारा, युग ने तारा को यकीन दिलाने की कोशिश की। आई ट्रस्ट यू मिस्टर राणा, लेकिन मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है। जो आपकी बात मानकर मैं शादी के मंडप में चली जाऊं, हर किसी की किस्मत कृषा सिंघानिया जैसी नहीं हो सकती, तारा ने जवाब दिया। मौलिक ने पास आकर तारा को समझाने की कोशिश की, लेकिन तारा ने हाथ के इशारे से उसे दूर रोक दिया था। वो गुस्से में बोली, क्या आपका दिल एक पल के लिए भी नहीं कांपा मुझे धोखा देने से पहले? हर बार की तरह आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। पता है, आपकी हेल्प करने पर एक बार के लिए मुझे ये गलतफहमी होने लगी थी कि शायद मैंने पहले आपको गलत समझा था और सच में आपने इन सब माफिया की झंझटों से दूर रखने के लिए मुझे खुद से दूर किया था। पर आज आपने साबित कर दिया मिस्टर वल्होत्रा, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं जो अपनी ही बेटी को हमेशा मौत की कगार पर लाकर छोड़ देते हैं।
रोने की वजह से तारा का गला बैठ गया था और वो ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी। वहीं सबके समझाने के बावजूद तारा हिलने को तैयार नहीं थी, तो ध्रुव का गुस्सा अब उसकी काबू से बाहर हो गया था। उसने रिवॉल्वर निकाली और उसे लोड कर लिया। ध्रुव ने तारा की तरफ गन पॉइंट की और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चुपचाप मेरे साथ मुस्कुराते हुए सबके सामने चलो, वरना तुम मेरी जान ही तो लोगे। ले लो, तुमसे शादी करने से ये ज्यादा बेहतर है, तारा ने सिसकते हुए कहा। ध्रुव गन के साथ तारा के बिल्कुल पास आ चुका था। युग ने तारा का हाथ पकड़ा और उसके आगे आ गया। ध्रुव और युग एक दूसरे को आंखों ही आंखों में चैलेंज कर रहे थे। अचानक ध्रुव ने गन नीचे की और तारा से बोला, तुम्हें खुद के मरने से बेशक फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो तुम्हारी वजह से मुसीबत में आ गए हैं? तुम्हें क्या लगा कि तुम उन्हें त्रिपुरा भेज दोगी, एक ऐसी जगह जहां गलती से भी किसी का शक नहीं जाएगा और वो बच जाएंगे? ध्रुव की फेस पर ईविल स्माइल थी, तो वहीं तारा के चेहरे पर गहरे दर के भाव। वो समझ गई थी कि ध्रुव मिली और उसके भाई बहनों की बात कर रहा था। तारा को यही लगा था कि वो उन लोगों को ईस्टर्न स्टेट में भेजेगी तो ध्रुव का उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे, तारा ने सख्त आवाज में कहा। और मैं क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर राणा ने प्रॉमिस किया है, लेकिन उनकी, मिली और भाई बहनों की कोई शील्ड नहीं है, ध्रुव ने सर्द आवाज में कहा। जब भी वो युग से गुस्सा होता था, तब ऐसे ही उसे मिस्टर राणा कहकर बुलाता था। पहले जहां ध्रुव से बचने के लिए तारा ने युग का हाथ पकड़ रखा था, अचानक उसने युग का हाथ झटके से छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह निकला। वो समझ गई थी कि अब उसका लड़ना बेकार था और उसे अपनी किस्मत को स्वीकार करना ही होगा। तारा ने हां में सिर हिलाया और ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तैयार हूं, तारा ने नजरें झुकाकर कहा। बेटर भी, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, खामखा दो घंटे बर्बाद कर दिए। ये जो खुद का हाल कर रखा है वो सही करके अगले एक घंटे में मंडप में पहुंच जाना, ध्रुव ने जवाब दिया। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया था। वहीं तारा अब तक अपनी जगह पर सुन खड़ी हुई थी। युग ने गहरी सांस ली और तारा के पास आकर उसके हाथ को पकड़ा। वो तारा को अपने साथ लेकर जा रहा था। तारा बिना किसी सवाल के बस उसके पीछे रोबोट की तरह चल रही थी। युग उसे लेकर फोर्थ फ्लोर पर गया, वो फोर्थ फ्लोर जहां युग और कृषा के अलावा युग को किसी का कदम रखना तक पसंद नहीं था। तारा भी बिना किसी सवाल के उसके साथ वहां आ गई थी। उसे बाहर छोड़कर युग अपने रूम में गया। लगभग 5 मिनट बाद वो वापस आया और उसके हाथ में एक बॉक्स था। जाकर चेंज करके आओ, युग ने प्यार से कहा। क्या आप मेरी हेल्प करने वाले हो? तारा ने मासूमियत से पूछा। उसे लगा कि युग कपड़े चेंज करने के लिए कह रहा था, तो शायद उसका इरादा बदल गया होगा। वहीं युग के फेस पर छोटी सी जेन्युइन स्माइल आ गई। आज उसे पहली बार तारा में कृषा दिखाई दे रही थी, बिल्कुल उसी की तरह मासूम। युग ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ड्रेस की वजह से बातें बनी। वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑलरेडी तुम काफी परेशान हो। युग के कहने पर तारा चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वो वापस लौटी तो उसने पेस्टल पीच कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर युग के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। वैसे तो तारा पहले से तैयार थी, लेकिन रोने की वजह से उसके बाल और मेकअप थोड़ा बिखर गया था। युग उसे सही कर रहा था और साथ में वो तारा की ज्वेलरी भी चेंज कर रहा था। तारा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बैठी हुई थी। लगभग आधे घंटे में युग ने उसे तैयार कर दिया था।
तारा ने खुद को आईने में देखा, वो सच में अच्छी लग रही थी। हाँ, उसका मेकअप उतना परफेक्ट नहीं था, पर उसकी शादी का जोड़ा बहुत सुंदर था। तारा खड़ी हुई और युग के गले लग गई। वो रोती, उससे पहले युग बोला, प्लीज रोना मत, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, और मुझे सच में मेकअप करना नहीं आता है। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम किसी को बुला सकें। आखिर क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? जो सेफ्टी और प्यार मुझे मिस्टर मल्होत्रा के पास फील होना चाहिए था, वो आपके पास आने पर फील होता है। शायद मुझे आपकी बेटी होना चाहिए था, तारा ने भारी आवाज में कहा। ये इम्पॉसिबल है, युग ने आईज रोल करके जवाब दिया। युग तारा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, वो प्यार से उसे धीरे धीरे सहला रहा था। अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य तैरने लगे। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और जमीन पर एक लड़की की लाश गिरी हुई थी। युग ने उसे बाहों में उठा रखा था। हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, तुम बस हिम्मत रखो, युग ने परेशान स्वर में कहा। तुम अच्छे से जानते हो युग, मैं नहीं बचूंगी, हमें इन सब में बेवजह घसीटा गया है। प्रॉमिस करो युग, तुम मेरी बेटी को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, वो लड़की बोली। वो कोई और नहीं, तारा की माँ दिया थी, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसकी बात सुनकर युग वहीं पर रुक गया था, वो शांत था। दिया की सांस उखड़ने लगी थी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्रॉमिस करो युग, मेरी तारा को सबसे प्रोटेक्ट करोगे। मैं जानती हूँ मौलिक मुझसे बहुत प्यार करता है, और मेरी मौत का जिम्मेदार भी वो कहीं ना कहीं तारा को ठहराएगा। ऐसे में तुम एक पिता के सारे फर्ज निभाओगे, दिया सुबकते हुए बोली। युग ने हाँ में सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, आई प्रॉमिस, आई विल प्रोटेक्ट हर ऑलवेज।